نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو ابو عامر فاسق ایک شخص تھا جو اصل میں اسلام دشمن تھا، ڈیٹیلز میں نہ بھی جائیں، حضرت حنزلہ کا باپ بھی تھا۔ اس کا دل کیا تھا کہ مدینہ میں اپنا ایک اڈہ قائم کر لے جو مسلمانوں کے خلاف میٹنگز کے لیے استعمال کریں، کیونکہ جہاں بیٹھتے تھے مخبری ہوتی تھی، بظاہر وہ ان کا ایک گھات تھا لیکن نام مسجد کا دیا تاکہ لیبل سے لوگ غلطی کھا جائیں، اور اللہ کے نبی کو بلایا کہ اللہ کے نبی ذرا آئیے ادھر، ایک نماز تو پڑھا دیں، آپ کے ہاتھوں سے اوپننگ کروا لیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں گے اچھا جی اللہ کے نبی بھی ادھر آتے ہیں تو یہ اچھی ہی جگہ ہوگی۔ آپ چونکہ دل کے صاف تھے آپ نے کبھی نہیں کہا، حالانکہ اس وقت مدینہ میں دو مسجدیں موجود تھیں، مسجد نبوی جو مین سٹی کی ضرورتیں پوری کرتی تھی اور مسجد قبا جو مدافعات میں یعنی سببز میں چلتی تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی تیسری مسجد کی۔ لیکن اس شخص نے جب یہ کہہ دیا اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تبوک سے واپسی پہ یہ آیتیں جو بھی آپ نے پڑھی ہیں، یہ اللہ کے تعالیٰ نے نازل کر کے بتا دیا کہ نبی آپ کو نہیں پتا اس بندے کے دل میں کتنا خبث ہے، یہ تو امت کو توڑے گا، کچھ کو ادھر بلائے گا کچھ کو ادھر بلائے گا، اندر کھاتے میٹنگز کریں گے، نام مسجد کا ہوگا، کیا پتہ چلا بظاہر کچھ کام ایسے ہیں جو دیکھنے میں مسجد لگتے ہیں، مسجد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر موٹیو غلط ہے، نیت غلط ہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بہرحال پھر اللہ کے نبی جب آئے تو اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ اصل بات جو میری آپ کی ہے نا، یاد رکھیے منافق نہیں بننا، گناہ گر مومن بنے ہیں نا اللہ نکال دے گا، کیونکہ جب گناہ ہوتا ہے نا تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، وہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا، ایسے ٹالتا ہے نیکیوں کو، سنتیں چھوڑ دیتا ہے، ذرا یہ کر لوں، اچھا ذرا چاٹ بنا لوں، اچھا دہی بڑے بنا لوں، اچھا ابھی یہ کر لوں، کچن صاف کروں، نماز چلی جاتی ہے۔ یہ گناہ گار ہوتا ہے، مومن ہے گناہ گار، لیکن منافق کون ہوتا ہے؟ اس کے دل میں اسلام کا بغض ہوتا ہے، یہ دشمنوں سے ملے ہوتے ہیں، ان کو اسلام کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو نہ تو کٹر منافق بننا ہے نہ ڈھکا چھپا، اور کرنا کیا ہے کہ اس راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرتے جانا ہے۔ پھر اسے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کو ہماری اصل نہیں پتہ چل سکتی، ہم اچھا کام کر رہے ہیں بظاہر، نیت کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، تو اپنی نیتوں کو اچھا کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف تبوک کے لیے نکلنا اتنی بڑی آزمائش تھی صحابہ کی، اور دوسری طرف دین کے نام پہ مسجد بن رہی ہے جو اتنا بڑی نیکی کا کام تھا، دونوں کو دیکھ لیجئے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اگر کہیں ہلکا سا بھی کھوٹ کھپٹ کچھ نہ کچھ ہے تو اس کو نکال دے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس میں ان مخلص صحابہ کی توبہ کا ذکر آیا ہے، جس نام پہ شاید یہ سورۃ توبہ، تین لوگ تھے مخلص، کچھ تو مخلص تھے، آیت 102 میں جو صحابہ تھے مخلص تھے، لیکن عذر کے بغیر سستی کی وجہ سے تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں گئے، بعد میں ان کو غلطی کا احساس ہوا، اعتراف کیا، اور واپس آنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنا عذر رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن جو سب سے مشکل بات تھی وہ تھی ان کی حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، انہوں نے صاف آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، اس کو پڑھیے، ہر سال سناتی ہوں، پچھلے سال کے کسی دورے قرآن سے ہی سن لیجئے، مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں کے حالات پڑھتے ہوئے۔ وہ گناہ نیکی سے پیچھے ہو کر بھی اتنے شرمسار ہوتے تھے جتنے ہم گناہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے پہ بھی نہیں ہوتے۔ کس طریقے سے انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کے سامنے سچ بولا، 50 دن 2.5 مہینے سوشل بائیکاٹ، جس کو آپ کہتے ہیں میں تم سے نہیں بولتا، کہیں بھی جاتے سلام کرتے لوگ جواب ہی نہ دیتے، یہ ڈسپلن ہوتا ہے، یہ ہے لیڈرشپ، اگر آپ اچھے لیڈر ہیں کوئی آپ کے آگے بول نہیں سکتا، کیونکہ آپ بات صحیح کر رہے ہیں، غلط نہیں ہے۔ پوری طرح سے کٹ آف ہو گیا، ایک بار ان کے دل میں یہ نہیں آیا کہ اسلام چھوڑ دوں، بلکہ جب ایک بادشاہ جو غیر مسلم تھا اس نے خط بھیجا کہ کعب یہ تیرے ساتھی نے تیری کیا ناقدری کی ہے، تو اس کے ساتھ اتنی قدر اتنے کام کرتا تھا، آج کیا ہوا اگر ایک جنگ میں نہیں گیا، اور یہ بدری صحابی تھے، پہلے اتنی جنگوں میں جانے کا زوم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ آپ کو پچھلی نیکیاں ضائع نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی کوئی ایک ایسی نیکی کا وقت ہوتا ہے، اس دن وہ نیکی کرنا آپ کی پچھلی نیکیوں کو اور زیادہ قابل قدر کر دیتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں اتنا کچھ کر لیا اب اور کیا کرنا ہے، صبح میں کر رہے ہیں شام میں کیوں کریں، ادھر کر رہے ہیں تو ادھر کیوں کریں۔ یاد رکھیے السابقون الاولون جمع تفریق نہیں کرتے، وہ چل پڑتے ہیں، اور چلتے چلتے پھر ان کے لیے یہ سارے معاملے درست ہو جاتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ کاموں کو بہترین طریقے سے کرنا ہے، لیبل سے دھوکہ نہیں کھانا، आज अगर हम गुड डीड कर रहे हैं तो उसको नेकियां भी बनाइए, उसको राइटियस डीड्स बनाइए। सुन्नतों की जब तक स्टैंप नहीं होगी, बड़े से बड़ा काम नेकी नहीं होगा। मकसद अल्लाह की रज़ा नहीं होगी, बुनियाद अल्लाह के लिए नहीं होगी, तो वो काम दुरुस्त नहीं होगा। सारी बात का खुलासा, मजबूत बुनियादों पर दीन के काम कीजिए। हम धोखा खा रहे हैं माजरत के साथ, कुछ लोगों को क़यामत के दिन बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कुछ को तो दूसरे उन देखेंगे, अरे माशाल्लाह का कुम फी सकर, तुम तो हमें दावत देते थे नेकियों की, तुम किधर आ गए। हदीस है कि एक शख्स जो लोगों को नेकियों की दावत देता था, कल जहन्नुम में जलेगा। लोग उसके पास आएंगे, कहेंगे तेरी बातें सुन सुनकर तो हम जन्नत में आ गए, ये तू इधर क्यों है। कहेगा मैं तो तुम्हें कहता था, खुद नहीं करता था। तो ये स्टेज पे बैठे हुए लोगों को, ये प्लेटफॉर्म्स में बैठे और बड़े बड़े साबके और लाहबे और किबला और काबा और अल्लामा और फलां फलां, इन नामों से धोखा ना खाइए। हम सबको डरना चाहिए। सारी दुनिया आपको लाइक करे और अल्लाह डिसलाइक कर दे, आपकी एक मच्छर से ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मत लोगों की नज़रों से अपने आप को पालें और परखें कि हम इतने नेक तो हैं तभी तो हमें इतने लोग जानने लग गए। नहीं, खोखली नेकियाँ नहीं करनी, टूटी फूटी नेकियाँ नहीं करनी। फिर आप देखिए कि इन हिस्सों में आयत 102 में अंसार की बात थी। अंसार वो लोग थे जिन्होंने हिजरत करके आने वालों का हाथ थाम ली, सब कुछ पेश कर दिया। हम क्या करते हैं? जो कर सकते हैं वही करेंगे। और मुझे अक्सर अंसार के इस जुमले पे हैरत होती है कि महाजरीन आए, कुछ महाजर ऐसे थे कि उनकी बीवियाँ इस्लाम पर नहीं थी, कुफर पर थी, तो वो तो रह गई मक्का में। अपने घर बार वाले मैके वालों के पास जाते हो तो जाओ, मैंने तुम्हारे साथ इसलिए थोड़ी शादी की थी कि तुम्हारे साथ जाऊँ। अब आप सोचिए, एक जवान मर्द है और वो बीवी के बगैर है, मक्का से मदीना आ गए। मदीना में लिमिटेड औरतें हैं, अनसारे मदीना में से कुछ की दो बीवियाँ भी थी, मारूफ था उस वक़्त। घर आकर सोचते हैं मेरे पास तो दो बीवियाँ हैं और मेरे मुसलमान महाजर के पास एक भी नहीं है। अब ज़रा सोचिए तो सही, ये बातें कहनी बड़ी आसान है, करनी बड़ी मुश्किल है। अच्छा ए मेरे दोस्त, जिसको तू चाहे मैं छोड़ देता हूँ, इद्दत पूरी हो जाएगी, तू निकाह कर ले, क्योंकि तू भी एक मर्द है, तुझे भी बीवी की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा इशार कभी किसी ने किया या सोचा? आप में से मेरे में से कुछ सोच भी सकता है कि मेरे पास दो प्लॉट है, एक अल्लाह को दे दूँ एक खुद रख लूँ? हम कहते हैं दो हो गए, तीन और हो जाएँ तो पाँच हो जाएंगे। पाँच तोले सोना है, चार तोले दे देती हूँ और एक रख लूँ। हम कहते हैं नहीं, पाँच और हो जाए, दस तोले हो जाएगा, फिर ठीक है। हम प्लस अपने नाम पे करते हैं। सहाबा कराम की खूबियाँ क्या थी? तभी तो फिर अल्लाह ने उनकी तारीफ़ें की। और फिर तीसरी किस्म कौन थे, जिसको इस्तिलाह में ताबईन कहते हैं, जो सहाबा यानी अंसार और महाजरीन के नक्शे कदम पर चले थे। फिर इसे में सदक़े की बात बहुत हुई है, सदका माल को पाक करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह सदका कबूल करता है, इसको अपने दाएं हाथ में लेता है, राइट हैंडेड। और जिस तरह तुम अपने घोड़े के बच्चे को पालते हो, बछेड़े को पालते हो, इस तरह अल्लाह इसको पालता रहता है, हत्ता कि एक खजूर ओहद पहाड़ के बराबर हो जाती है। याद कीजिए सूरत अल अराफ में बड़े बड़े मवाजीन होंगे जिसमें फिर ये बड़े बड़े अमल तुलेंगे। मत सोचिए कि उस दिन तो इतना बड़ा तराजू ही नहीं होगा। जो कीजिए खुशी से कीजिए, थोड़े से लोग पुरखलूस कोशिश करें, बरकत हो जाती है। बहुत सारे लोग टूटे फूटे दिल से करें, बस लोग पीछे पड़ जाते हैं, दो देना पड़ेगा, चंदा दो, हम नमाज ही नहीं पढ़ाएंगे जब तक चंदा नहीं दोगे, खुतबा करके बीच में डब्बा फेर रहे हैं, पहले दो फिर जुमा पढ़ाएंगे, क्या करना है ऐसे पैसों से? लोगों के अंदर की खैर बाहर आ जाए, ये कुरान वो चीज़ है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, चंदा मांगना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है इसके लिए। मेरा तजुर्बा फ़र्क है, मैंने पिछले 20 सालों में कम अज़ कम, अल्लाह जानता है इस बात को, कभी किसी जगह कोई प्रोजेक्ट भी अगर शुरू हुआ है, ये नहीं सोचा कि लोग देंगे। सबसे पहले अल्लाह और फिर खुद। उसके पास क्या है? लिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्ध। मेरे पास क्या है? ये अच्छा, ये बेच लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ओके करता, अल्लाह काम करा लेता। लेकिन मैं देखती हूँ कि अहले खैर इस तरह ले ले के माल फिरते हैं। लोग डब्बा रखते हैं ना, उसमें 100-100 का नोट निकलता है, सारे दिन में 1000 नोट भी निकल आया तो क्या बना? आप मत मांगिए, एक बंदा आएगा 10 लाख दे के चला जाएगा आपको। अपनी इज्जत कायम रखिए। और सबसे बड़ी बात याद रखिए कि लोगों को पता है कहाँ लग रहा है, लोगों को पता है हमारा नफ़ा इसमें। आप और मैं कभी किसी ऐसी जगह पर लगाना पसंद करेंगे जहाँ ज़ाया हो जाए, ख़राब हो जाए, बेकार हो जाए? तो असल में तो मुझे ऐसे लगता है कि जब कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो हम दूसरों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं और अपने ऊपर एक लायबिलिटी ले रहे होते हैं कि देखिए आपके पैसे की हमें हिफाजत करनी पड़ेगी, अब आपकी मजबूरी, आपने तो देना है, चलिए दे दीजिए, अल्लाह के नाम पे कोशिश करेंगे कि आपकी ये चीज़ अच्छी जगह पे लगे। जिसको दिया जाता है जिस नाम पे, जिस इदारे पे, जिस प्रोजेक्ट पे, उन्होंने अगर इसकी जिम्मेदारी ना महसूस की, 2 साल बाद बिल्डिंग टूटने लगती है, कुर्सियाँ टेढ़ी मेढ़ी। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि देखिए पैसे नहीं चाहिए, आप भी चाहिए। अगर आप वहाँ आती हैं, आप फ़ायदा उठाती हैं, आपकी स्किल है, आप आइए वॉलंटियर कीजिए, सीखिए, सिखाइए, खिदमत कीजिए, फिर पैसे दीजिए। और अगर वाकई मेरी गैरत मैं अपने दिल में देखूं, मैं किसी ऐसे शख्स का कोई पैसा ना कबूल करूं जो वहाँ मौजूद है, सिर्फ पैसे किसी को दे दे के जाके मेरे उधर दे दो और ख़ुद उस हिस्से में, उस चीज़ में शरीक ना हो। ठीक है, अल्लाह जान माल दोनों मांगता है, कभी जान चाहिए कभी माल, लेकिन सिर्फ मैं बात समझाने के लिए कर रही हूँ, सिर्फ वो लोग माल की हिफाजत करते हैं जो खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट उनको पता होता है, हमने ये जगह बड़ी मेहनत से बनाई है, हम इसकी कदर करें। जैसे अपना घर खुद बनाया हो तो उसकी कदर है, और कहते हैं बाद में बहू बेटियों को वो कदर नहीं होती। तो सारी बात का खुलासा क्या है, आज यहाँ कुरान सीख रहे हैं, पूरे खलूस से सीखिए, पूरे दिल से सीखिए, कल सिखाने जाएंगे, पूरे दिल से सिखाने जाइए, भर्रा मत टालिए, और अगर कुछ देना है इज्जत से, खुशी से, खुशबू लगा कर, हज़रत आयशा की तरह चमकते हुए दीजिए, पूरे दिल को यकीन से करके दीजिए, शक और शुबे से पाक करके दीजिए। और अगर 1% शक पड़ता है ना आपको कि ये ठीक जगह नहीं लग रहा, मत दीजिए। हमें तो कभी कोई ना दे, हमें तो कोई नहीं देता। जैसे आपको कहता है कि आजकल अलबरका का प्रोजेक्ट चल रहा है, एक लिंक भी आज शेयर करेंगे कि जिसमें अपॉर्चुनिटी दे दी गई है कि अगर आप देना चाहते हैं तो हम इस आपको एक ऑफ़र दे देते हैं, लेकिन मैं आप सबको कहूँगी कि सिर्फ तब दीजिएगा जब आप 120% पूरी तरह कन्विंस्ड है कि अगर इस बिल्डिंग पे आपका पैसा लगेगा तो उसकी खैर आपके शहर में, आपके बच्चों, बच्चियों और आपके मर्दों तक जाएगी। अगर आपको 1% भी शक है, 1 रुपया इनको ना देकर जाएं, मैं आपको कह रही हूँ इधर बैठ के, इनको अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि बरकत उसमें है, थोड़े से में भी बरकत हो जाएगी। तो क्या सीखा इस पूरे रुकू से, जिसमें चूंकि 5 मुख्तलिफ किरदार थे, इस पर ज़्यादा वक्त लगा। पहली बात क्या है कि दावत हक पर लब्बैक कहूँगी, बोलिए तो क्या बन जाऊँगी, साबिकून अव्वलून। फिर मैं अल्लाह से राज़ी रहूँगी, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करूँगी, एक दूसरे के लिए दुआए रहमत करूँगी, तौबा करूँगी, और साबिकून अव्वलून में बनना अपनी ज़िंदगी का गोल बनाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। अब चलते हैं आगे, जन्नत का सौदा। आप बड़े खुशकिस्मत हैं, मुझे तो आप सब पे रश्क आता है। आज अल्लाह ताला आपको एक डील दे रहा है, तैयार है? सुनिए इस डील को, फिर बात करते हैं कि अल्लाह ताला आज आपको मुझे क्या ऑफ़र दे रहा है, और अल्लाह से दुआ कीजिए कि इन ऑफ़र्स पर हम पूरे दिल दिमाग के साथ, शरह सदर के साथ बेहतरीन तरीके से लब्बैक कहने वाले बन जाएं। आयत 111 से 118, रुकू नंबर 3, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मुसलमानों से इनकी जानें और इनके माल इस बात के बस ख़रीद लिए कि इनको जन्नत मिलेगी। कितने लोग इस सौदे पर राज़ी हैं, जान देकर, माल देकर जन्नत मिल जाए तो कितने लोग तैयार हैं? अल्लाह आप सबको जन्नत दे दे। सस्ता सौदा के महंगा, बड़ी थोड़ी कीमत है, ये जान क्या है? लोग इस जान की क्या कीमत लगाते हैं? देखिए, अनफुस के अंदर नफ्स है, ख्वाहिशात हैं, आरजुएं हैं, तमन्ना है। कभी घर में कागज़ कलम लेकर बैठिए और अपने से चंद सवाल कीजिए, ख्वाहिशों के नाम पर कितनी को पूरी कर लीं, और भी 4 हो जाएंगी। लोगों को कितना खुश किया, और खुश कर लें, हो जाते हैं। 10 दफ़ा आप खुश करें, 1 दफ़ा ज़रा सा पीछे हो जाएं, सारी आपकी नेकी ज़ाया कर देंगे। मुझे तो तुमसे कभी खैर ही नहीं मिली, आप तो हैं ही ऐसे। अल्लाह आपको मुझे कहता है, लोगों मैं तुम्हें ख़रीदूँगा। करना क्या है? अब हर सौदेबाजी में कुछ शरायत भी तो होती है ना, डूज़ एंड डोंट्स, क्या करना पड़ेगा? वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिसमें कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं, इस पर सच्चा वादा किया गया तौरात में और इंजील में और कुरान में, और अल्लाह से ज़्यादा अपने अहद को कौन पूरा करने वाला है? तो तुम लोग इस सौदे पर जिसका तुमने अल्लाह से मामला ठहरा लिया, खुशियाँ मनाओ, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी बिजनेस डील हो रही है। अच्छा ताजिर घर आए और मुस्कुराहट छुपाए, समझ लीजिए आज लाखों कमा के आया है, खुशी छुप नहीं रही। बताना इसलिए नहीं जाता, बेगम ने फरमाइश कर देनी है, अब वो डायमंड का सेट ले दो, अगर आज इतना बड़ा मिल गया, लेकिन खुशी छुपे नहीं छुपती, आपके मेरे चेहरों से इस वक्त ऐसी खुशी टपकनी चाहिए, ऐसे लगे कि मेरे से ज़्यादा मालदार बिलियनेरियन, मिलियनेरियन कोई बंदा ही नहीं है। करना क्या है? वो ऐसे हैं जो तौबा करने वाले, लिस्ट बनाइएगा 1, 2, 3 से, तौबा करने वाले। ए अल्लाह, हम अपने पिछले गुनाहों पे तौबा करते हैं, आइंदा से हमें बचा ले। फिर इबादत करने वाले, ए अल्लाह हमें बेहतरीन इबादत करने वाला बना। हम्द करने वाले, शौर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा रखने वाले और अल्लाह की राह में सफ़र करने वाले, शायख उनके दो तर्जुमे हैं, रियाजत सियाहत, अल्लाह के दीन के लिए सफ़र करना, ये कितनी बड़ी सआदत है, अल्लाह हमें ये नसीब कर दे। फिर रुकू और सजदा करने वाले, नेक बातों की तालीम देने वाले और बुरी बातों से बाज रखने वाले और अल्लाह की हदों का ख्याल रखने वाले, चौकीदार। अच्छा आलिम चौकीदार होता है। क्या करता है चौकीदार? चोरों को आने नहीं देता और घर से किसी चीज़ को बाहर जाने नहीं देता। अच्छा आलिम, सच्चा उस्ताद कौन है? दीन की सरहदों पे चौकीदार बन जाता है, कहता है कोई बिदत अंदर नहीं आने दूंगा, कोई गलत चीज़ इस दीन में आने नहीं दूंगा और किसी सुन्नत को, किसी फ़र्ज़ को बाहर जाने नहीं दूंगा। अल्लाह हमें चौकीदार बना ले अपने दीन का। और ऐसे मोमिनीन को खुशखबरी सुना दीजिए, पैगंबर को और दूसरे लोगों को जायज़ नहीं कि मुशरिकीन के लिए मग़फ़रत की दुआ मांगें, अगरचे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इस बात के ज़ाहिर होने के बाद कि वो लोग दोस्ती हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए दुआ मग़फ़रत करना, वो सिर्फ़ इस वादे के तहत था जो उन्होंने उनसे लिया था। फिर जब ये बात उन पर ज़ाहिर हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो इससे महज बेताल्लुक़ हो गए। और वाकई इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता कि किसी कौम को हिदायत करके बाद में गुमराह कर दे, जब तक इन चीज़ों को साफ साफ ना बतला दे जिनसे वो बचे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है, बेशक अल्लाह ताला ही की सल्तनत है आसमानों और ज़मीन में, वही ज़िंदा करता और मरता है, अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। अल्लाह ताला ने पैगंबर के हाल पे तवज्जो फरमाई और महाजरीन और अनसार के हाल पर भी, जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त पैगंबर का साथ दिया। हाईलाइट करें, जब ज़रूरत हो उस वक्त कोई आपका साथ ना दे और बाद में अपनी मजबूरियों पे मदद के दावे और जान माल पेश कर दे, तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती। आपको ज़रूरत नहीं है, अब आपको कोई कुछ कहे तो वो आपको बोझ लगेगा। सहाबा की खूबी क्या थी कि उन्होंने तंगी के वक्त पे इस्लाम की मदद की और नबी के ऊपर ट्रस्ट किया। इसके बाद इनमें से गिरोह के दिलों में कुछ तजलजुल आ चुका था, फिर अल्लाह ने इनके हाल पर तवज्जो फरमाई। बिलाशुबा अल्लाह ताला इन सब पर बहुत ही शफीक और मेहरबान है। और अब तीन लोग जिनका किस्सा पीछे छिड़ा था, अब दोबारा उनकी बात है। और तीन लोगों के हाल पर भी जिनका मामला मुलतवी छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि जब ज़मीन बावजूद अपनी फराही के इन पर तंग होने लगी। इसको हाईलाइट कर लें, यह ज़िक्र पीछे भी गुजरा। जब मुसलमान जिहाद से पीछे होंगे ना, तो ज़मीन उन पर तंग होगी और हर किस्म की तंगियाँ, बोझ। आज आप देख लीजिए, हर मुल्क के वीज़े आसान हैं, मुसलमानों पर मुश्किल है। जो मुसलमान गैर मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं ना, सहम सहम के रहते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आज हम सोचते हैं दीन के काम करेंगे तो ज़िंदगी तंग होगी, अल्लाह कह रहा है दीन का काम छोड़ने पे ज़िंदगी तंग हो जाती है। और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि ज़मीन अपनी वसतों के बावजूद इन पर तंग हो गई, और फिर इसके बाद वो ख़ुद अपनी जानों से तंग आ गए और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कोई पनाह नहीं मिल सकती सिवाय इसके किसी की तरफ रुजू किया जाए। फिर इनके हाल पर तवज्जो फरमाई ताकि वो आइंदा भी तौबा कर सकें। बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला और बड़ा रहम वाला है। ये है वो तीन सहाबी, काब बिन मालिक और मुरारा बिन रबी और हलाल बिन उमैया। आपके मेरे लिए इसमें अमल की बात है, कभी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ये कहते हैं कि मैं सोचता था मैं निकलूंगा, बट अभी क्यों, मेरी तो सवारी बड़ी अच्छी है, वो तो सुजुकी कार पे गए हैं, मेरी तो लैंड क्रूज़र है, आधा घंटा बाद में भी निकलूंगी तो पहुंच जाऊंगी, ये टोन थी। और जब डिली डेली करते हैं तो फिर मौका नेकियों का निकल जाता है। मुनाफिकीन झूठे उजर करके सच्चे बन गए, इन्होंने सच बोल के ख़ुद को झूठा करार दिया। आपके मेरे लिए अमल की बातें क्या है? सबसे पहले ख़ुद को इस बात का यकीन दिलाइए, मैं फिर बोलूँगी, सबसे पहले ख़ुद को इस बात का यकीन दिलाइए कि मेरा सब कुछ अल्लाह का है। कुछ समझ आ गई ये बात? सिर्फ 2.5% नहीं है अल्लाह का, 100 में से 2.5 नहीं, 2.5% नहीं। ये तो आम लोगों की बातें हैं, ये साबिकुन अलवलून तो नहीं होते, ये होंगे मुरजून आखरून, चलें कुछ तो करना कर ही लेते हैं। आपका मेरा गोल तो आज ये नहीं, हमने तो वलीउल्लाह बनना है। तो फिर कहिए मेरा सब कुछ अल्लाह का। और सब कुछ में क्या आता है? पहले तो आप और मैं खुद, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन, ये जान अल्लाह की, ये वक्त अल्लाह का, ये ताकत अल्लाह की। फिर बच्चे, कहिए मेरे बच्चे अल्लाह के हैं, इन्नी नज़र तो लका माफ़ी बतनी मुहर्ररा। हमने अपने बच्चे किनको दे दिए? वैसे तो अपना बच्चा कोई किसी को नहीं देता, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत ने अपने बच्चे तालीम को दे दिए, माशरे को दे दिए, दौलत को दे दिए, और जो ना समझ लोग हैं उन्होंने तो गैर मुस्लिमों के हाथ में पकड़ा दिए। खुश होते हैं बच्चा इंग्लिश बोलता है, इस रंग में रंग है। कहिए मेरा बच्चा मेरे अल्लाह का है। फिर इसके बाद क्या है आपके पास? घर, मेरा घर अल्लाह का, मेरा सारा जेवर अल्लाह का है। मैं क्या डोरियों नगों मोतियों के वजन में पढ़ूँ? अल्लाह जी मेरा सब कुछ आपका है। कपड़े अल्लाह के, उनको कैसे दें? अल्लाह के रास्ते में पहनिए, इस्तेमाल कीजिए, हक दीजिए उनका। अपनी एक एक नेमत को अल्लाह के सामने ऐसे पेश कर दें जैसे लोग शादी ब्याहों में पेश करते हैं। एक एक सोच, स्किल्स हैं आपके पास, खूबियाँ हैं, कहिए मेरी हर खूबी अल्लाह के लिए। और आपको पता कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इंशाल्लाह डॉक्टर्स के लिए भी जगह बननी है। अल्लाह करे कि हमें गरीबों का मुफ्त इलाज करने की तौफीक हो जाए। अब फिर कहिए मेरा सब कुछ अल्लाह का। जब सब कुछ अल्लाह का हो जाता है तो फिर क्या रहता है पीछे? फिर आप लोगों के हाथों में नहीं बिकते, फिर आप अपने हाथों में नहीं बिकते। पिछले सालों की तफसीर सुनिए, एक मिसाल दी थी, कुछ लोग अपने हाथों बिक जाते हैं, सेल्फ प्लीजर, कुछ लोगों के हाथों बिक जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग बातें, लोगों का डर, लोगों का खौफ, ये पीपल प्लीजर हैं। हमने ना सेल्फ प्लीजर, ना पीपल प्लीजर, अल्लाह प्लीजर बनना है। ये नहीं हो सकता कि लोग हमसे खुश हों और अल्लाह नाराज़ हो, ये नहीं हो सकता कि हम खुशियाँ मना रहे हों और अल्लाह को हम पे गुस्सा आ रहा हो। तो कहिए अल्लाह मेरा सब कुछ तेरा। चलिए अगला एहसास दिलाइए खुद को, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी कामयाबी है। कहाँ से मिलती है ये कामयाबी? अल्लाह की रज़ा पाने वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा कामयाब लोग हैं। अपने आप को पूछिए, क्या मैं कामयाब होना चाहती हूँ? क्या होगा? देखिए दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, आज तक जो कुछ किया है उन सब को जहन में ले आइए, और भी कुछ कर लेंगे लोग आपसे खुश नहीं होंगे, बिलीव मी। हाँ, एक हस्ती है जो आपसे ज़रूर खुश होगी। हमने हज़रत इब्राहिम का किस्सा पढ़ा ना इस रुकू में, बाप के सामने आके खड़े हो गए, हालांकि लोग कहते लोग बाप के आगे बच्चा बोल रहा है। जब आप अल्लाह के बन जाते हैं, अल्लाह की रज़ा आपके सामने होती है, फिर आप ये नहीं कहते रिश्तेदारी का मसला है, ख़ानदान है ना, बिरादरी है। हम बस जब अपने ख़ानदानों के हाथों बिके होते हैं, नहीं, हमने अल्लाह की रज़ा को पाना है। फिर अपने आप को यकीन दिलाइए कि अल्लाह सबसे बड़ा हामी और मददगार है। करते हैं इसकी नियत, इरादा करते हैं कि ए अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा। अब मुझे बताइए, अगर अल्लाह आपका हामी और मददगार हो गया तो किसी दूसरे की कोई ज़रूरत पड़ेगी आपको? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद यकीन दिलाइए अपने आप को इस बात का कि अल्लाह की राह में जीना और मरना, मरने का मौका हर एक को नहीं आता। कितने लोग शहीद हो रहे हैं? अभी अल्लाह को आपकी मेरी जान नहीं चाहिए, अभी ज़िंदगी चाहिए, अभी अल्लाह के रास्ते की मौत नहीं चाहिए, अभी जीना है। कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया, बस अभी इस पे रुके, अभी नहीं मरना अल्लाह जी, हमने प्लीज़ हमें ना मारिएगा, अभी कुछ करके आना है, बोले इंशाल्लाह। और अब तो जीने का मज़ा आने लगा, अब तो पता चला कि जीना होता क्या है, एक रब के लिए जीना और दुनिया और इंसानों में खो के जीना, ये तो दो मुख्तलिफ रूप है, ये तो दो मुख्तलिफ किरदार है। तो अल्लाह भी हम में से किसी को मौत ना देना जब तक मैं ईमान की और अमल की उस कैफियत में ना आ जाए कि जब मौत का फरिश्ता आए तो या ये तो हर नफ्सुल मुतमईना की पुकार लगे, और फिर उस वक्त हमें एहसास हो कि हमने इस ज़िंदगी में नफ़े के सौदे किए। एक सिस्टर की बात, थोड़ी सी खुलासा याद आ गया, सारी ज़िंदगी वैसी थी जैसी होती है, दुनियादारियाँ भी थी, घरदारियाँ भी थी, ख़ानदानदारियाँ भी थी, बिरादरियाँ भी थी, दावतें, खाने पकाने, अल्लाह ने ज़िंदगी के आखिरी साल में कुरान से जोड़ दिया, और शौरी तौर पे जोड़ा, वैसे तो हम बचपन से जुड़े हुए हैं। फिर बीमार हो गई, फिर बिस्तरे मर्ग पे थी, फिर उनकी सोच ये थी कि अगर मेरी ये एक आखिरी साल की ज़िंदगी अल्लाह मुझे ना देता तो आज मैं अल्लाह को किस मुँह से मिलती। और सिर्फ एक साल वो साथ रहीं, अल्लाह उनको ले गया। आज भी हम उनका नाम मोतियों की तरह जपते हैं, हमारा कोई मौका उनके जिक्र से, याद से खाली नहीं जाता। क्यों? उन्होंने उस वक्त दीन के नाम पे हमारा साथ दिया जब हम बिल्कुल अकेले नए थे। आपको मुझे अल्लाह इस दीन के नए पौधे और इस वक्त जिस वक्त हमारे बीज डल रहे हैं उसमें खपा दे। कोई बाद वाला आपके सजर को पा ही नहीं सकेगा, क्योंकि आप बुनियाद बन चुके होंगे। ये छतें बदल सकते हैं, ये दीवारें बदल सकते हैं, बुनियादें नहीं बदलती। दुआ कीजिए अल्लाह में दीन की बुनियादें बना दें। आपको तो कि मस्जिद नबी की ज़मीन की याद किसकी थी? अल्लाह के नबी जब मदीना में गए और आपकी ऊँटनी बैठी और उठ गई, तो आपने कहा ये जगह किसकी है? कहा दो यतीम बच्चों की है, बुलाओ। कहा कि ये ज़मीन बेचो, कि सुहैल और साहल कुछ इस तरह के नाम थे। क्यों? कहा इसलिए कि यहाँ मैं अल्लाह का घर बनाऊँगा, मैं अपने से पहले अल्लाह का घर बनाऊँगा मदीना में। उन्होंने कहा अल्लाह का घर बनेगा? अल्लाह के नबी ऐसे ही ले लें? कहा नो, मैं नहीं ऐसे लूँगा, वरना तो हर जगह रस्म पड़ जाएगी, हर हुक्मरान जाकर पहले लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े करेगा और फिर वहाँ मस्जिदें बनेगी। कहा नहीं। कहा अच्छा, फिर जो देना है दे दें। आपने वो ज़मीन ख़रीदी और आज वहाँ मस्जिद नबी है। कभी आप जो हर साल लाखों लोग मस्जिद नबी में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, उन्होंने कभी याद भी किया उनको? कईयों का तो पता भी नहीं होगा, लेकिन वो बुनियादें बन गए मस्जिद नबी की। और आप देख रहे हैं तौसी हो रही है, एक्सपेंशंस हो रही हैं। असल वो जो खसबस गुम्बद और वो जो आपका हुजरा है, उसको क़यामत तक कोई नहीं छेड़ेगा। ये दुआ कीजिए आज। ये है विलायत का मुकाम। आप किन चिल्लों में खो गए और आप किन करामतों में खो गए, आज की करामत ये है कि अल्लाह मेरा सब कुछ तेरा। और फिर दिल में ज़रा बोझ ना हो, बल्कि खुशी हो कि अल्लाह ये कबूल हो जाए, ये बस तू ले ले मेरे से, ये ना हो कि कोई दूसरी बात मेरे सामने आ जाए। वो कहते हैं ना कि फिर बंदा जान बचाता नहीं, जान ले ले के फिरता है कि अल्लाह ये जान ले ले मुझसे प्लीज़, अल्लाह ये माल ले ले चोरी ना हो जाए, अल्लाह ये जेवर ले ले इससे पहले कि इसका भाव गिर जाए, अल्लाह ये ज़मीन का टुकड़ा ले ले मुझसे इससे पहले कि इसके ऊपर पानी आ जाए। और एक वक्त आएगा इस पूरी दुनिया पर पानी आ जाएगा। कभी हमें से कोई एक प्लॉट ऐसा ख़रीदना चाहेगा? मिसाल है कि मार्केट में एक प्लॉट 10 लाख रुपये का है और आपको एक ख़बर आती है कि 1 लाख में बिक रहा है, कान तो खड़े होंगे, ले लूँ ले लूँ, भाई वजह क्या है, ये इतना सस्ता क्यों? वो कहते हैं असल में ये प्लॉट एक ऐसी जगह पे है जिधर से एक नाला है, उसका बंद टूटने वाला है और अगले 1 साल के अंदर इस ये दरिया में चला जाएगा, इधर कलर आ जाएगा, इधर नमक आ जाएगा। मुझे बताइए कोई इतना ना समझ है कि 1 लाख में भी वो 10 लाख का प्लॉट खरीदे? नहीं खरीदेगा। कि 1 लाख भी क्यों ज़ाया करूँ जो अगले साल ये दरिया का हिस्सा बन जाना है? रियल लाइफ में से अक्सर यही सौदे कर रहे हैं कि वो ज़मीन जिस पे इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु माला, वो ज़मीन जिस पे ज़लज़ले भी आने, वाइज़ल क़ुबूर बोसिरत और वाइज़ल बिहार फुज्जिरत वाइज़ल बिहार सुज्जिरत, पूरा कुरान कसमें खा रहा है ये ज़मीन ख़त्म हो जानी है। और वो तो क़यामत में होना है, तुम्हारी जान चली गई तो ये सब तो वैसे ही ख़त्म हो गया। यकूलुल अब्दु माली माली, बंदा सारी उम्र अपना माल मेरा माल मेरा माल कहता रहता है, हालांकि उसके माल सिर्फ 3 है, खा लिया और जिस्म से फुजला बन के निकल गया। खाओ, अच्छा खा लिया, चलो पहन लिया और चीथड़े बन गया, यानी अच्छा खा पी लिया वो आपका है, और तीसरा जो अपने हाथ से आगे अल्लाह के खातों में डाल दिया। फरमाया बाकी तो सारा वो रसा का है। तुम में से कोई है ऐसा जिसको उसके वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा प्यारा हो? दूसरे के माल पे क्या मान है भाई? आपकी 10 कनाल की कोठी है, हमें क्या? आपके 100 तोले सोना पड़ा है, मुझे क्या, आपको क्या? हमें तो अपनी चीज़ की खुशी होती है। फरमाया बंदा हमेशा दूसरों की चीज़ों की हिफाजत करता है और कब्र में चला जाता है। ये है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अन्फुसहुम व अमवालहुम, इससे ज़्यादा रेट आपको कोई नहीं दे सकता, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा रेट कौन देगा आपको मुझे? इन टूटी फूटी, ये टूटा फूटा बदन, अल्लाह कहते कत्ल किए हुए बंदे को जो लाश है मिट्टी में डालते हो, मैं तुम्हारे इसी जिस्म को ख़रीद लूँगा। अल्लाह से ज़्यादा कोई हाई बिडर नहीं है। अल्लाह बिड दे रहा है आपको मुझे, आज जाकर कैश करा लो, क्योंकि हम भी अल्लाह के, हमारा माल भी अल्लाह का। वरना याद रखिए बाद में तो शायद कोई दुआ भी करने वाला ना हो। तो क्या सीखना है? अपनी ज़िंदगी अल्लाह के सुपुर्द करनी है, और बिकी हुई चीज़ को दोबारा नहीं बेचते। इट्स सोल्ड, आप लिख लें अपने नाम के साथ, आई एम सोल्ड, डोंट ट्राई टू बाई मी। बच्चों को भी कहते हैं आई एम सोल्ड नाउ, बिकी हुई चीज़ पे लिख के लगा देते हैं, ख़त्म भाई, सॉरी। अब इसको दूसरे कहें ये नहीं, ये बिक गई और लेनी है तो ले लो, नहीं तो वो भी बिक जाएगी। हम दुनिया में बिके हुए थे, अल्लाह ने हमारे सौदे करके भेजा, हम पता नहीं किन चीज़ों में पड़ गए।